प्रेषोदाव कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर अब्बास और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार करें।
एक व्यक्ति पैगंबर इस्लाम के पास आया और उसने पैगंबर इस्लाम से पूछा, हे ईश्वरीय दूत, क्या ईश्वर हमसे निकट है और हम उससे धीरे से प्रार्थना कर सकते हैं, या वो हमसे दूर है और हम उसे जोर से बुलाने के लिए मजबूर हैं। पैगंबर इस्लाम कुछ बोले नहीं, यहाँ तक कि उन पर पवित्र कुरान की आयत नाजिल हुई और उस आयत ने समस्त कालों के एक ईश्वरवादियों का जवाब दे दिया। आयत में महान ईश्वर कहता है, और जब मेरे बंदे मेरे संबंध में आपसे पूछें तो मैं बहुत निकट हूँ और मैं पुकार का जवाब देता हूँ। जब मुझे पुकारा जाता है तो उन्हें चाहिए कि मेरा आदेश माने और मुझ पर ईमान रखें, ताकि सीधे मार्ग पर उनका पथ प्रदर्शन हो जाए।
श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का पवित्र महीना जारी है, आजकल हर रोज़ेदार की ज़बान पर है, हे हमारे पालनहार, हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरी आजीविका से रोज़ा खोलता हूँ और तुझ पर भरोसा रखता हूँ। दुआ ईश्वरीय बंदगी का प्रतीक है। दुआ इसी तरह इंसानों में बंदगी की भावना को मजबूत करती है। महान व सर्वसमर्थ ईश्वर की बंदगी का एहसास वो चीज़ है जो समस्त ईश्वरीय दूतों के प्रयासों का आधार थी, और वे इंसानों में बंदगी की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि केवल धार्मिक मार्गदर्शक ही दुआ के महत्व के बारे में बात करते हैं और अपने अनुयायियों का आह्वान उसके प्रति कटिबद्ध रहने के लिए करते हैं। ये दृष्टिकोण वास्तविकता से बहुत दूर है, क्योंकि दुआ वो चीज़ है जिसे सब करते हैं और वो किसी समय या स्थान से विशेष नहीं है और वो सर्वकालिक है।
दुआ इंसान की स्वाभाविक आवश्यकता है। यही वजह है कि जब इंसान सांसारिक कार्यों से थक जाता है तो वो दुआ के माध्यम से अपने पालनहार से संपर्क करके अपनी आत्मा को शांति प्रदान करता है। दुआ का मूल्य व महत्व समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह फुरकान की 77वीं आयत में कहता है, हे पैगंबर, आप कह दीजिए कि हमारे पालनहार को तुम्हारी परवाह नहीं है अगर तुम उससे दुआ न करो। इस आधार पर जीवन में सुकून हासिल करने के लिए दुआ से लाभ उठाना चाहिए, जैसा कि आज समस्त जागरूक और बुद्धिजीवी व विचारक दुआ से लाभ उठा रहे हैं और शांति पहुंचा रहे हैं और स्वयं को अधिक ऊर्जा से समृद्ध बना रहे हैं।
अमरीकी लेखक डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, प्रार्थना के समय अविश्वसनीय ढंग से ईश्वरीय प्रकाश से लाभान्वित होता हूँ और मैं इस बात का आभास करता हूँ कि मेरा समूचा अस्तित्व आत्मा है। यद्यपि मैं एक शरीर के होने से अवगत हूँ कि मेरे पास एक शरीर है, और जब मैं इस एहसास और आत्माओं के संसार में भ्रमण करने के बाद अपने शरीर में लौटता हूँ तो शक्ति का आभास करता हूँ, जैसे मेरे शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा भर गई हो। इसी प्रकार डेन कार्नेगी भी लिखते हैं, जब मैं ये आभास करता हूँ कि मैं बहुत थक गया हूँ तो उस गिरजाघर के अंदर चला जाता हूँ जिसका द्वार खुला देखता हूँ। उसमें जाने के बाद मैं अपनी आँखों को बंद कर लेता हूँ और दुआ करता हूँ, और मैं इस बात का आभास करता हूँ कि शरीर, स्नायु तंत्र और आत्मा में दुआ का बहुत प्रभाव है।
दुआ का सबसे महत्वपूर्ण लाभ वो प्रभाव है कि वो इंसान में आशा की किरण जगा देती है। निराश इंसान बेजान इंसान की भांति है। बीमार इंसान को जब ठीक होने की आशा होती है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर वो निराश हो जाए तो उसके दिल में आशा की किरण बुझ जाएगी और उसके ठीक होने की आशा खत्म हो जाएगी। जिस तरह रणक्षेत्र में विजय का मुख्य कारण सिपाहियों का ऊंचा मनोबल होता है, इस आधार पर अगर निराश सैनिक आधुनिकतम हथियारों से भी लैस हों तब भी वे रणक्षेत्र में हार जाएंगे।
जो इंसान दुआ करता है और महान ईश्वर पर भरोसा करता है, अगर वो महान ईश्वर की बारगाह में दुआ करता है, उससे आशा करता है और उससे अपने दिल की बात करता है, तो कठिनाइयों के अधिक होने के बावजूद उसके दिल में आशा की किरण पैदा होती है और जीवन के प्रति आशावान हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे दोबारा ज़िंदगी मिल गई हो। इंसान के अंदर यह आभास होता है कि उसने उसकी ओर हाथ फैलाया है, जिसके लिए दुनिया की कठिन से कठिन मुश्किल भी बहुत आसान है और उनका समाधान महान ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। महान ईश्वर जिसके लिए कठिन है और आसान काम कोई अर्थ नहीं है, वो महान व सर्वसमर्थ है और वो तत्वदर्शी रचयिता है। वो समूचे ब्रह्मांड को चलाता है। वो जिस चीज़ का भी इरादा करता है वो चीज़ तुरंत हो जाती है। जिस सूरज को हम देखते हैं उस जैसे लाखों सूरज ही क्यों न हों। जब इंसान इस प्रकार के महान ईश्वर से संपर्क करता है, इस प्रकार के सक्षम व सर्वशक्तिमान को पुकारता है, उससे अपने दिल की बात करता है, उसके सामने सजदा करता है, आंसू बहाता है और अपनी मुश्किलों को उससे बयान करता है, तो निस्संदेह महान ईश्वर उसके दिल में आशा की किरण पैदा कर देता है।
दुआ का एक लाभ यह है कि उससे इंसान के अंदर तकवा अर्थात ईश्वरीय भय पैदा होता है। तकवा इंसान के महान ईश्वर से निकट होने और लोक परलोक में सफल होने का कारण है। दुआ इंसान के दिल में प्रकाश का दीप जलाती है। जब इंसान दुआ के लिए हाथ उठाता है, महान ईश्वर से मदद मांगता है, महान ईश्वर को उसके अच्छे नामों व विशेषताओं से बुलाता है, इंसान के इस कार्य का प्रभाव होता है और निश्चित रूप से उसका ध्यान महान ईश्वर की ओर जाता है और इंसान ये सोचेगा कि अगर महान ईश्वर चाहेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी।
इसी तरह दुआ इंसान को प्रायश्चित करने का आह्वान करती है और प्रायश्चित इंसान को दोबारा अपने जीवन पर नज़र डालने के लिए प्रेरित करता है। ये चीज़ इंसान के जीवन में ईश्वरीय भय को जीवित करती है। रवायतों में है कि महान ईश्वर ने अपने दूत हजरत ईसा मसीह से कहा, हे ईसा, मुझे उस तरह से बुलाओ जिस तरह पानी में डूबते इंसान की कोई मदद करने वाला नहीं होता, और मेरी ओर आओ। हे ईसा, मेरे समक्ष अपने हृदय को स्वच्छ व पवित्र बनाओ और अकेले में मुझे बुलाओ। अपने दुआ में अपने दिल को हाजिर बनाओ और रोकर तथा गिड़गिड़ाकर मुझे पुकारो।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम जो वसीयतें की हैं उसमें फरमाते हैं, ईश्वर की दया व कृपा के खजाने से ऐसी चीज़ मांगो जो उसके अलावा कोई और नहीं दे सकता, जिसे लंबी उम्र, स्वास्थ्य और अधिक रोजी, दुआ की कबूली में विलम्ब से कभी भी निराश न हो, क्योंकि ईश्वरीय दान नियत के अनुसार है। कभी दुआ के कबूल होने में विलम्ब होता है ताकि दुआ करने वाले का पारितोषक अधिक और परिपूर्ण हो जाए। कभी दुआ करते हैं परंतु कबूल नहीं होती है, क्योंकि जो तुम मांगे वो जल्द ही या नियत समय पर उसे बेहतर तुम्हें दिया जाएगा। तो तुम्हारी मांगे इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो तुम्हारी सुंदरता को पूरा करे और तुम्हारी समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करे, कि दुनिया का माल हमेशा नहीं रहेगा और न ही तुम दुनिया के माल के लिए बाकी रहोगे।
इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम महान ईश्वर से दुआ करें तो सुंदर व शोभनीय हो। इसी तरह वो पवित्र व स्वच्छ हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि अपवित्र और दूषित मन ईश्वरीय अनुकंपाओं को प्राप्त करने का न तो उचित पात्र है और न ही दुआओं के कबूल होने के योग्य है। रिवायत में है कि बनी इसराइल को 7 साल तक विचित्र अकाल का सामना रहा, इस प्रकार से कि उन्हें मरे हुए जानवरों और कूड़े कचरे को भी खाना पड़ा। उन्होंने पहाड़ पर जाकर और मरुस्थल में जाकर जितनी भी दुआ की उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो ईश्वर ने उनके पैगंबर पर अपना संदेश भेजा कि उनसे कह दें कि जितनी भी मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करूँगा, किंतु ये कि जो माल दूसरों पर अत्याचार करके लिया है उसे लोगों को वापस कर दो। इसके बाद उन लोगों ने ईश्वर के आदेशानुसार किया तो उन पर ईश्वरीय कृपा की वर्षा हुई।
श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ये महान ईश्वर की कृपा का द्वार खुलने का महीना है। इस महीने में दुआ कबूल होती है, ये बंदे और अपने रचयिता के बीच वार्ता का महीना है, ये दुआ करने और दुआ कबूल होने का महीना है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया है, रमज़ान की पहली रात को आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और महीने की अंतिम रात तक ये दरवाज़े बंद नहीं किए जाते। शुभ सूचना है उन लोगों के लिए जो इस अवसर से लाभ उठाते हैं और दिल को इस महीने की प्राणदायक हवाओं से प्रफुल्लित बनाते हैं। कितना सुंदर है सूर्यास्त और रोज़ा खोलने के समय दुआ के लिए हाथ उठाएँ और अपने दूसरों के मोक्ष के लिए दुआ करें।